आर्यन और सानवी जय को लेकर जब घर के दरवाजे पर पहुंचे तो जय की आंखों में जो चमक थी उसने पूरे घर को रोशन कर दिया। जैसे ही वो अंदर आया वो खुशी से उछल पड़ा, कभी ड्राइंग रूम में भागता, कभी अपने नए कमरे की तरफ। ये घर अब सिर्फ दीवारों का नहीं रहा था, ये जय के लिए अपना घर बन चुका था।
मामू, ये सब मेरा है।
जय की मासूम आवाज पर आर्यन मुस्कुरा उठा। उसने जय को गोद में उठा लिया और उसके माथे पर हल्की सी किस कर दी। हाँ चैम्प, अब ये सब तुम्हारा ही है। जय अचानक सानवी के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया।
दीदी?
हूँ। सानवी झुककर उसके सामने बैठ गई। आपने बहुत अच्छा किया, जय ने पूरे भरोसे के साथ कहा। आपने मेरे मामू से शादी कर ली, तभी तो मैं यहाँ आ पाया, वरना मैं मामू के साथ नहीं रह सकता था ना। उसके शब्द छोटे थे मगर असर बहुत बड़ा। सानवी एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने जय को सीने से लगा लिया। हाँ, हमने यही तो चाहा था, उसने भर्राई आवाज में कहा। आर्यन ये दृश्य देख रहा था। उसके सीने में कुछ अजीब सा भर गया, कृतज्ञता, जिम्मेदारी और डर, तीनों एक साथ। रात को जब जय थककर सो गया और घर में सन्नाटा छा गया, तब आर्यन और सानवी बालकनी में आकर खड़े हो गए। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। आर्यन ने चुप्पी तोड़ी। सानवी, हमें जय के सामने अपनी शादी को रियल बनाना होगा। सानवी ने उसकी तरफ देखा, हैरानी नहीं थी, बस गंभीरता थी। मैं भी यही सोच रही थी, वो बोली। अभी वो नया नया आया है, उसे अपनापन चाहिए, भरोसा चाहिए। अगर उसे जरा सा भी लगा कि सब दिखावा है तो वो टूट जाएगा। आर्यन ने रेलिंग पर हाथ टिकाया। वो पहले ही बहुत कुछ देख चुका है, अब अगर उसे लगे कि उसका ये घर भी झूठ पर टिका है तो। वो आगे नहीं बोल पाया। सानवी ने धीमे से कहा, इसलिए कुछ दिन हमें सच में एक कपल की तरह रहना होगा, उसके सामने नहीं, उसके लिए। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक तो हो ना इस फैसले से? सानवी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अगर इससे जय मुस्कुराता है तो मैं ठीक हूँ। दोनों कुछ देर खामोश रहे। दूर कमरे से जय की नींद में बुदबुदाने की आवाज़ आई। मामू! सानवी ने आंखें बंद कर लीं। वो हमें अपना सब कुछ मान चुका है आर्यन, अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ दिखावा करना नहीं, उसे सुरक्षित महसूस कराना है। आर्यन ने गहरी सांस ली। तो तय रहा, उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा। शायद शुरुआत मजबूरी से हुई थी, लेकिन आगे की राह दिल से तय हो रही थी। सानवी का मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। जय के आने की खुशी अभी पूरी तरह से दिल में उतरी भी नहीं थी कि कृति की चिंता ने उसे फिर से घेर लिया। उसे अच्छे से पता था कृति अभी भी इंद्र के घर में रह रही है। उसने मोबाइल उठाया और कृति का नंबर मिलाया। एक रिंग, दो रिंग, फोन कट गया। सानवी ने फिर कोशिश की, इस बार भी नहीं, तीसरी बार, चौथी बार, लेकिन हर बार फोन बजता रहा और उधर से कोई जवाब नहीं आया। सानवी की उंगलियां मोबाइल को कसकर पकड़ चुकी थीं। कृति फोन क्यों नहीं उठा रही? उसके मन में आशंकाएं सिर उठाने लगीं। शिव मेहता आज ऑफिस में पूरे अधिकार के साथ खड़ा था। वही ऑफिस जहां कभी जेसिका और विक्रांत का रॉब चलता था, आज वहां उनकी चीजें कार्डबोर्ड बॉक्स में भरी जा रही थीं। टेबल से फाइलें हटाई जा रही थीं, कैबिनेट खाली हो रही थी, नेम प्लेट उतारी जा चुकी थी। स्टाफ चुप था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी की नज़रें बहुत कुछ कह रही थीं, क्योंकि सब जानते थे जय की कस्टडी जाते ही शेयर भी हाथ से निकल गए थे, और शेयर के बिना ये ऑफिस अब जेसिका और विक्रांत के लिए सिर्फ एक इमारत भर रह गया था। जेसिका की आंखों में गुस्सा था, अपमान था और कहीं ना कहीं डर भी। विक्रांत जबड़े भींचे खड़ा था। शिव मेहता ने शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, आप दोनों का यहाँ रहना सिर्फ जय की कस्टडी और शेयर की वजह से था, अब वो वजह खत्म हो चुकी है। वहीं खड़ा देव ने आगे बढ़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपका सारा सामान मैं खुद घर पर भिजवा दूंगा। जेसिका ने देव को घूर कर देखा। विक्रांत ने चारों तरफ एक आखिरी नजर डाली। ये वही ऑफिस था जहां कभी लोग उनसे नजरें मिलाने से डरते थे, और आज उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। इधर इंद्र के घर में कृति खिड़की के पास खड़ी थी, मोबाइल उसकी हथेली में था, स्क्रीन पर सानवी के मिस्ड कॉल्स चमक रहे थे। कृति सोफे पर बैठी थी, मोबाइल हाथ में लिए, लेकिन उसकी नजर स्क्रीन पर नहीं, दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो इंद्र का इंतजार कर रही थी। आज दिल में अजीब सी बेचैनी भी थी और उत्सुकता भी। दरवाजा खुला, इंद्र अंदर आया कोट उतारते हुए। आ गए? कृति तुरंत उठ खड़ी हुई। इंद्र ने थकी हुई सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और तुम्हें एक बात बतानी थी। कृति की धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? मैंने कोर्ट में गवाही दी, इंद्र ने सीधा कहा, सानवी और आर्यन के पक्ष में, और उन्हें जय की कस्टडी मिल चुकी है। मुझे पता था, वो बोली, रिया का फोन आया था, उसने सब बता दिया। इंद्र ने उसे गौर से देखा, तुम खुश लग रही हो? हाँ, कृति ने बिना झिझक कहा, क्योंकि जय की अब सुरक्षित है। इंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चलो कहीं बाहर चलते हैं, दिमाग भी हल्का हो जाएगा। कृति ने राहत की सांस ली, ठीक है चलो। दोनों लिफ्ट से नीचे आए। रात हल्की सी ठंडी थी। बिल्डिंग की पार्किंग में पीली लाइट्स के नीचे कारें खड़ी थी। इंद्र अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक धड़ाम, एक गाड़ी तेजी से आई और इंद्र की कार को साइड से छूती हुई निकल गई। टक्कर ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन आवाज और झटका दोनों काफी थे। इंद्र वहीं रुक गया। ए, ध्यान नहीं है क्या? वो गुस्से में चिल्लाया। वो गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुकी। उसमें से दो लोग उतरे, ठंडी लापरवाह निगाहों के साथ। इंद्र आगे बढ़ा। कम से कम माफी तो मांग सकते हो, उनमें से एक ने कंधे उचकाए। इतनी सी बात पर ड्रामा मत करो, दूसरा हल्का सा हंसा और बोला, कुछ हुआ भी नहीं है। कृति का खून खौल उठा। आप लोग गाड़ी मारकर ऐसे बात कर रहे हैं? लेकिन वे लोग बिना कोई जवाब दिए बिल्डिंग के अंदर की तरफ चले गए। इंद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तमीज नाम की चीज नहीं है। कृति भी भरी हुई थी। सच में ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। वे दोनों अपनी कार में बैठे, लेकिन इंद्र ने इंजन स्टार्ट नहीं किया। कृति ने खिड़की से उस खड़ी गाड़ी की तरफ देखा जिससे टक्कर लगी थी। फिर अचानक उसकी आंखों में शरारत चमकी। एक काम करे, उसने धीमे से कहा। इंद्र ने उसकी तरफ देखा। क्या? कृति ने होंठ दबाकर मुस्कान रोकी। हम उनकी गाड़ी तोड़ देते हैं। एक पल को इंद्र चौंका, फिर उसके चेहरे पर वही शरारती गुस्से वाली मुस्कान आ गई। खराब आइडिया है, उसने कहा। कृति ने आंखें दराई, लेकिन बहुत सुकून देगा। अगले ही पल दोनों कार से बाहर निकल चुके थे। पार्किंग लगभग खाली थी। कृति ने पास पड़े एक छोटे से लोहे के रॉड से शीशे पर हल्की सी चोट मारी। शीशे में दरार पड़ गई। इंद्र ने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर उसने भी हाथ साफ कर दिया। साइड मिरर एक झटके में टूट गया। दोनों का गुस्सा जैसे निकलता जा रहा था। अब बराबर लगा, कृति ने फुसफुसाकर कहा। तभी दूर से आवाज आई, अरे ये क्या कर रहे हो? दोनों चौंक गए, वही लोग वापस आ रहे थे। कृति ने इंद्र का हाथ पकड़ा, चलो भागो। दोनों दौड़कर अपनी कार में बैठे। इंद्र ने एक झटके में कार स्टार्ट की और एक्सेलरेटर दबा दिया। पीछे से चिल्लाने की आवाजें आती रहीं, लेकिन उनकी कार अंधेरे में आगे बढ़ चुकी थी। कुछ दूरी पर आकर इंद्र ने गाड़ी धीमी की। दोनों की सांसें तेज थीं। फिर अचानक कृति हंस पड़ी खुलकर जोर से। इंद्र ने उसकी तरफ देखा और खुद भी हंस पड़ा। हम पागल हो गए हैं शायद, कृति ने कहा, लेकिन आज बहुत दिनों बाद अच्छा लगा। कार सड़क पर आगे बढ़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था। आज सिर्फ एक गाड़ी नहीं टूटी थी, आज उसके भीतर जमा कई सवाल और दबाव भी कहीं पीछे छूट गए थे। गाड़ी तेजी से क्लब के गेट के सामने रुकी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें। आपकी कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं।